हम गीता के 13वें अध्याय के 16वां भाग पर हैं। मेरे साथ मिलकर बोलिएगा, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरोच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरोच्यते कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरोच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरोच्यते जो कुछ कार्य है, जो कुछ क्रिएशन है, ये जो यूनिवर्स, द होल यूनिवर्स इज ए क्रिएशन, हम भी किसी के क्रिएशन है, ये जो शरीर है, संसार का कोई भी चीज, और इस क्रिएशन का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो कारण है, ये दोनों के दोनों प्रकृति उसका कॉज है। प्रकृति मतलब जो प्राइमोडियल मैटर जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, सत्व रजत तमो गुणात्मिका प्रकृति, जिसकी चर्चा हम काफी दिनों से कर रहे थे। तो ये पूरा संसार और संसार को भोगने की जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हमारे इंद्रियां, हमारा शरीर, वो तो प्रकृति से बनी है, पर उसमें जो सुख और दुख भोगना, वो पुरुष के, पुरुष का मतलब आदमी नहीं, यहां पुरुष टेक्निकल टर्म है, आत्मा का, जीवात्मा उसका कारण है। पिछले बार इसकी थोड़ी सी चर्चा हमने की थी कि वस्तु में जो सामान है, जो वो हमारा सुख दुख का कारण नहीं है। मेरे पास कितना घर है, कितने पैसे हैं, मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरे दोस्त कैसा है, मेरा देश कैसा है, वो मेरा सुख दुख का कारण नहीं होता। अगर होता तो अमेरिका में सब सुखी होते, भारत में सब दुखी होते, अफ्रीका में सब दुखी होते, सब अनपढ़ दुखी मिलते, सब पढ़े लिखे सुखी मिलते, सब पैसे वाले सुखी मिलते, गरीब लोग दुखी मिलते, ऐसा कभी नहीं होता है। कभी कभी उल्टा भी दिख जाता है। इसीलिए, क्योंकि इन सबको बनाने के पीछे कारण तो प्रकृति है, पर उसके अंदर जो रस लेना होता है, सुख या दुख का, ये हमारे पास होता है। पिछले बार जैसे आपको उदाहरण दिया कि ये हमारा व्यू पॉइंट, स्टेट ऑफ माइंड है, वो डिसाइड करता है कि मैं इसे सुख लूं या दुख लूं। फैशन बदलता रह जाता है, हर 2 साल में 3 साल में कपड़ों का फैशन बदल जाता है। जिस कपड़े को आप $1,000 देकर आज ही खरीदे क्योंकि नया फैशन है, 3 साल के बाद उस कपड़े को आप सस्ते में, फ्री में भी दे, आप नहीं लेते हो नए कपड़े को, क्योंकि आउट ऑफ फैशन हो गया। कोई दे दिया तो आप पहनते ही नहीं है, आपको मजा नहीं आता है। कपड़ा तो वही है, पर क्योंकि अब आपकी स्टेट ऑफ माइंड उसके प्रति चेंज हो चुका है, अब उसके मजा नहीं आता है। पिछले बार जैसे हमने गुलाब के फूल और कैक्टस का एग्जाम्पल दिया था, आजकल जैसे कैक्टस एक मॉडर्न फैशन का शौक है, पर आज से 50 साल पहले कैक्टस तो जंगली पौधे होते थे, लोग गाय बकरी से रोकने के लिए फेंस बनाते थे। अब जिसके घर में कैक्टस है वो उतना ज्यादा आर्टिस्टिक व्यू वाला आदमी माना जाता है, उसका ज्यादा जो नेचर के प्रति व्यू पॉइंट वो ज्यादा आर्टिस्टिक है। जिसके घर में नॉर्मल फूल है, गुलाब हो, अब गुलाब नॉर्मल हो गया, वो थोड़ा एवरेज किस्म का आदमी है। और आपने ये पता नहीं ये इंडियन फूल लगा रखा है, तो बड़ा बैकवर्ड है। हर 10 साल में 15 साल में 20 साल में आपका सेंस बदल जाता है। वही चीजें कल जो आपको सुख देता था आपको दुख देता है, जो दुख देता था आज सुख देता है। इसका मतलब फूलों के साथ मेरा सुख दुख जुड़ा हुआ नहीं है, घर के साथ सुख दुख जुड़ा हुआ नहीं है, बच्चे के साथ नहीं है, मेरा जैसा स्टेट ऑफ माइंड है ये मैं उसका कारण हूं कि मैं कैसे अपने आप को बना के रखता हूं। प्रकृति तो हमेशा न्यूट्रल होता है, वो तो बेचारा जड़ है, उसमें ना कोई जान है ना कोई जीवन है, वो आपको कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। जिस चीज को कल तक आप देखते नहीं थे आज उस पर आप दीवाने हैं, कल तक जिस पर आप दीवाने थे आज उसकी तरफ मुड़ के नहीं दिखते। कोई चेंजेस आया, वो चेंज उस वस्तु में नहीं आया, आपके अंदर आता है, आपके माइंड में आता है, आपके मन में आता है, आपके व्यू बदल जाते हैं। तो पुरुष सुख दुखों का भोक्ता होता है, का कारण होता है। सुख और दुख इंद्रियों से जुड़े होते हैं, मनोनुकूलम सुखम, जो मन को अच्छा लगे। क्या डेफिनेशन है सुख और दुख का, बड़े मजेदार चीज है। जितने भी संस्कृत के शब्द होते हैं ना, वो शब्द के अगर आप रूट पर जाएंगे, अगर आप उस शब्द की डेफिनेशन ढूंढना है, आप फिलोसॉफिकल बुक्स ढूंढेंगे, बड़े बड़े थिंकर्स के बुक्स पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन ढूंढने के लिए। पर अगर आप संस्कृत में उसके रूट पर चले जाएं, ग्रामेटिकल रूट पर, आपको डेफिनेशन ढूंढने की जरूरत नहीं, उसका जो रूट है वो अपने आप में डिफाइन करता है। जैसे सुख और दुख, आपको आप पूछोगे सुख क्या चीज होता है, दुख क्या चीज होता है, अब जाओगे बड़े बड़े राइटर्स थिंकर्स फिलोसोफर के पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे कि क्या होता है सुख, क्या होता है दुख। पर हमारे संस्कृत में एक बड़ी खूबसूरती बात है कि इसमें दो शब्द से बना, सु मतलब अच्छा, ख मतलब इंद्रियां। जो इंद्रियों को अच्छा लगे वो सुख है, जो इंद्रियों को दुख लगे, खराब लगे, वो दुख है। बच्चा आपका ही है जी, कल तक तो आप बच्चे के लिए दीवाने थे, उसके बिना आपकी पानी नहीं पी जाते था, उसको देखे बिना। अब क्या हो गया, उसका शकल देखने से ही आपको नफरत होता है कि उस बेचा बट्टा तो वही है, पर आज आप उसके शकल नहीं देखना चाहते क्योंकि आज वो आपके इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता, आपके शरीर को, आपके मन के खिलाफ है वो। वो ऐसा कुछ एक्टिविटीज करता है जो आपके इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए अब आपको वो पसंद नहीं है। और आपकी इंद्रियां क्योंकि मन क्योंकि बदलता रहता है सोसाइटी के साथ, कल्चर के नाम पर और हजारों चीजों के नाम के साथ बदलता रहता है, इसलिए आपका टेस्ट बदलता रहता है। क्योंकि आपका टेस्ट बदल चुका है तो आपको उन चीजों में मजा नहीं आता है। चीजें तो वही होती हैं। तो सुख और दुख इंद्रियों से, शरीर से जुड़ा हुआ चीज होता है। जो शरीर को अच्छा लगे, मन, शरीर में मन भी एक अंग है, तो वो अच्छा, वो सुख है, हैप्पीनेस है। जो मन को अच्छा ना लगे वो दुख है। पर आनंद कुछ दूसरी चीज है, आनंद शरीर से जुड़ा हुआ चीज नहीं है, इंद्रियों को डिपेंड नहीं करता। आनंद उसको कहते हैं जो इंद्रियों के बिना, शरीर के यूज के बिना जो आपके अंदर एक खुशी हो, जिसमें इंद्रियों का कोई रिलेशनशिप ना हो, बॉडी का कोई रिलेशनशिप ना हो, वो आनंद होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ मैटेरियल एलिमेंट्स होता है, वो आनंद होता है। जब आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, कभी अगर आप ध्यान की अभ्यास करते हैं, जब आपको पूरी तरह विचार शून्यता आ जाती है, आपको एक अजीब सी आनंद की, नशे की अनुभव होता है। वो किसी इंद्रियों के कारण नहीं हुआ, इंद्रियों के बिना हुआ। जब आपके लाइफ में आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो, किसी को हेल्प करते हो, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम हिम और हर, उसके बाद जो आपके दिल में चलता रहता है वो एक अजीब किस्म की हल्कापन, लाइटनेस, वो आपके अंदर का आनंद है। जिसमें आपके शरीर और इंद्रियों को अच्छा लगना बुरा लगने का कोई लेन देन नहीं था, क्योंकि आपका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। जब आप एक अंधे को रास्ता पार करा देते हो, जब आप एक गरीब को जिसको आप कोई जानते नहीं कुछ नहीं और आपका कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि भाई मकर संक्रांति में गरीब को खिलाना है क्योंकि पुण्य कमाना है। अब पुण्य तो हुआ ना, आपने पैसा कमा लिया। कोई पैसे कमाता है, आप पुण्य कमाते हो तो वो तो आप धंधा करते हो, तो उसमें आपको खुशी नहीं मिलती है। पर आप अगर नॉन रिलीजियसली अनरिलीजियसली स्पॉन्टेनियसली किसी को हेल्प करते हो विदाउट एक्सपेक्टिंग स्वर्ग नरक पाप पुण्य पैसा जो भी एनीथिंग, वो जो आपको अंदर एक अजीब सी खुशी देगी वो आनंद है। पर अगर किसी को आप कंबल बांटते हो इसीलिए कि आपका लेखा जोखा चित्रगुप्त करता रहे, मरने के बाद हिसाब करे, तो फिर तो आप बिजनेस करते हो। इस जीवन में भी कमाते हैं, अगले जीवन के लिए भी कुछ सेव करते चले, वो एक अलग चीज है। और ध्यान रखिएगा, सचमुच ऐसे बिजनेस का कोई फायदा नहीं। बेवकूफ लोग इस टाइप के बिजनेस करते हैं। क्या किसी को हेल्प करो क्योंकि इसके बदले कुछ मिलेगा? बेवकूफ इसीलिए क्योंकि हमारे यहां एक परमानेंट थ्योरी है कि आप कुछ भी करो उसका रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। पर विथ एक्सपेक्टेशन करो, वो रिजल्ट आपको मिलेगा, पर नेचुरली वो आपको सुख दुख दोनों देगा। पर विदाउट एक्सपेक्टेशन करो तो वो अच्छे कर्म का जो रिजल्ट मिलेगा मिलेगा, अब वो निष्काम भाव होने के कारण आपके मन में जो प्यूरिटी आती है, जो पवित्रता आती है, उसका अलग अलग यूज होता है। बेवकूफ लोगों को सोच समझ के भला काम करते हैं। बेवकूफ इसीलिए कि उनको हर एक के पीछे एक एक दो दिखता है, उनको तीन चार आठ दस दिखता नहीं है। आप जब निष्काम हो जाते हो, आपके कर्म का फल जरूरी नहीं एक के पीछे एक मिले, हजारों हो सकता है। जब आप कामना रखते हो जितना है उतना मिलता है, तो वो आनंद है जहां आपका इंद्रियां इन्वॉल्व ना हो, आपका मन इन्वॉल्व ना हो, कुछ एक्सपेक्टेशन ना हो, आप अनइंटेंशनली कुछ पाने की चाहत के बिना आपके नेचुरल इंस्टिंक्ट के कारण आप हेल्प करते हो, क्योंकि आप एक इंसान है। और इंसान तो छोड़िए, हम तो जानवरों को भी देखते हैं, वो भी दूसरों को हेल्प कर देते हैं। ऐसा मैं आपकी डोमेस्टिक कुत्ता या बिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो करते ही करते हैं। वो तो जंगली जानवर भी हमने देखा है कि शेरनी के दूध भी कभी कभी हिरन का बच्चा पी लेता है, हिरन के बच्चा जिसका मां मर चुकी होती है। कुत्ते की मां की दूध भी पता नहीं बिल्ली के बच्चे भी पी लेते हुए हमने देखा है। जानवरों में भी ये इंसानियत होता है। अब हम उसको इंसानियत कहते हैं इंसान के नाम पर एक्चुअली ये प्राणी मात्र का स्वभाव है। हमारे में ये काम होता जा रहा है वो अलग, इसीलिए इंसानियत बोलना पड़ता है। वो हर प्राणी में दिखता है, हमारे में क्योंकि अब कम हो गया, हर चीज में हम देन लेन हिसाब रखते हैं, तो इसीलिए इंसानियत एक बड़ी चीज होती गई है। आनंद जब आप सेक्युलरली फील करते हैं, जहां किसी चीज का इन्वॉल्वमेंट आउटसाइड का ना हो। अगले श्लोक पर आइए। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंते प्रकृतिजान गुणान कारणं गुणसंगोस्य सदसद्यो निजन्मसु पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंते प्रकृतिजान गुणान कारणं गुणसंगोस्य सदसद्यो निजन्मसु पुरुष, ये जीवात्मा, ये सेल्फ, प्रकृति के बनाए हुए चीजों में ये शरीर प्रकृति का बना हुआ है, मेड बाय नेचुरल एलिमेंट्स। ये संसार भी उसी का बना हुआ, इस प्रकृति के बने हुए चीजों में रहता हुआ प्रकृति के द्वारा पैदा किया गया चीजों को एंजॉय करता है। एंजॉय करता है कोई बात नहीं, पर जब वो उन चीजों के साथ अटैच्ड हो जाता है एंजॉय करते करते, वो उसके अच्छे जन्म बुरे जन्म, अच्छे बुरे कर्मों का, कर्म फलों का, अच्छे बुरे जन्मों का कारण बनता है। किसी चीज को भोगने से आपका अगला कर्म फल नहीं बनता है जब तक आप उससे अटैच नहीं होते हो। तो श्लोक का मीनिंग है, इंडीड द सेल्फ सीटेड इन प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमोडियल मैटर, जिनसे ये प्रकृति संसार ये यूनिवर्स बना है। एक्सपीरियंस इज द गुणाज बर्न ऑफ प्रकृति, इट्स अटैचमेंट टू दोज गुणाज इज द कॉज ऑफ बर्थ इन गुड एंड एविल ओम्स। देखिए आदमी दुखी है घर में, वो जंगल जाए इसका अर्थ नहीं कि वो सुखी हो जाएगा, मंदिर जाए जरूरी नहीं कि वो सुखी हो जाएगा। जो दुखी आदमी है वो घर में भी बीवी बच्चे से दुखी रहेगा, पति बच्चों से दुखी रहेगी, वो मंदिर में भी दुखी मिलेगा, वो संन्यास लेकर के जंगल में चले जाए वहां भी दुख ही बांटता फिरेगा, हिमालय में तपस्या करने जाए वहां भी फिरेगा। हिमालय तो हिमालय, वही हिमालय वैसा ही है जैसा आपका घर है, सब जड़ है, इनके पास कुछ नहीं है। हमारी जो माइंडसेट है, जिस तरह के टेंडेंसी हमने नेचर बना रखा है, हम कहीं भी जाएंगे वैसा ही करेंगे। एक लालची आदमी मंदिर में भी आए, उसके दिमाग में यही रहेगा हिसाब किताब, कितना ज्यादा आए, यहां भी आए, खुद के लिए नहीं तो मंदिर के लिए भी आए, वो नेचर है। वो मंदिर को भी बिजनेस सेक्टर बना देगा, बन चुके, देखिए ज्यादातर मंदिर तो बिजनेस के सेंटर बन चुके, क्योंकि इंसान तो वही है ना, कोई स्पिरिचुअल आदमी तो कम आता है। तो हम जहां भी जाते हैं जिस सोच के साथ जाते हैं वही सोच फैलाते रहते हैं। तो अगर हम अपने आप को बदल सके तो हिमालय घर में ही मिल जाएगा। न देवो विद्यते काष्ठे न मृण्मये न पाषाणे भावे ही विद्यते देवो तस्माद् भावो ही प्रधानम्। वो दिव्यता, वो डिविनिटी न पत्थर में है, न लकड़ी में है, न मंदिर में है, वो तो आपके अपने इमोशन में है, आपके फीलिंग में है। अगर आप इसको संभाल सकते हो, प्यूरिफाई कर सकते हो, उसको ठीक ढंग से ला सकते हो, तो वही तुम्हारे अंदर दिव्यता लाएगी। बाकी चीजें तो हेल्प करने के लिए। अगर तुम इम्प्योर माइंड के साथ मंदिर में भी जाते हो, इसको भी इम्प्योर बनाओगे। तो घटना सब प्रकृति में तो घटती है, पर उसकी जो फीलिंग है हम अपने अंदर करते हैं। जमीन घर सब कुछ यही है, प्रकृति का है, ये नेचर का है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया संसार, ईश्वर इसका मालिक है, पर जो बना हुआ जो एलिमेंट है वो प्रकृति से है। हम आते हैं घर पर, कब्जा करते हैं, नेम प्लेट लगाते हैं, बड़े प्राउडली अपना घर बोलते हैं, हम चले जाते हैं, मर जाते हैं, घर वहीं का वहीं रहता है। दूसरा आदमी आता है अपना नाम प्लेट लगाता है, वो भी मर जाता है, तीसरा आता है अपना लगाता है, घर टूट जाता है, जमीन वहीं के वहीं रहती है। जमीन तो लाखों साल पहले भी थी जी, लाखों साल बाद भी रहेगी, मेरे से पहले लाखों मालिक उस जमीन के हो चुके हैं, तथाकथित सो कॉल्ड ओनर, मेरे बाद भी लाखों लोग उसके ओनर बनेंगे। जमीन में जान होती तो जरूर मुस्कुराती, इस बेवकूफ 50-60 साल के लिए आता है, कहता मैं तेरा मालिक हूं मैं तो वही के वही हूं, मेरा मालिक कभी दावा नहीं करता है कि मैं तेरा मालिक हूं। ये यूज करने वाले लोग, दुकानदारी करने वाले लोग अपने आप को मालिक समझते आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। हम दावा करते रहते हैं उन पर। दुनिया में कोई चीज, हमारा घर, हमारा पैसा, हमारे जो भी हमने कमाया, जिनके साथ हम अटैच हैं, जिनके कारण हमारा इमोशन में चेंजेस आता रहता है, उन्होंने कभी हमारे साथ रिलेशनशिप नहीं रखी है। आपका घर है, आप रहो ना रहो, ना रहो तो घर को कोई प्रॉब्लम नहीं, रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशनशिप हमने बनाई है, अटैचमेंट हमने बनाई है। घर बनाया था रहने के लिए, हम रहते अब कम है, ज्यादातर समय बाहर रहते हैं, 8 घंटे ऑफिस में रहते हैं, 2-4 घंटे इधर उधर रहते हैं। घर में हिसाब करें तो पूरे 24 घंटे में अब जगे हुए 1-2 घंटे 3-4 घंटे मिलते हैं, बाकी तो सो जाते हैं, खाते हैं। पर आपकी सबसे ज्यादा अटैचमेंट घर के साथ हो जाता है। प्रॉब्लम भोगने में नहीं है। कृष्ण कहते हैं शरीर में रहता हुआ आदमी भोगता है, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, द नेचर। प्रॉब्लम उसके लाइफ में कब शुरू होता है? जब वो भोगता कम है, अटैचमेंट ज्यादा रखता है। बच्चे आपके ही हैं, कोई पड़ोसी थोड़े ही छीन के ले जाता है। पर दावा करते रहना, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। बच्चे बीमार नहीं हुए तो रात को ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। बीमार हुए तो हॉस्पिटल लो, दवाई खिलाओ, ट्रीटमेंट करो। वो आप भी नहीं करोगे तो नेबरहुड भी कर देगा, आपका पड़ोसी भी कर सकता है। पर जब आपका बीपी बढ़ता है, इसका मतलब आपको बच्चों से मतलब कम है, आपका अटैच, आपके अपने इमोशनल प्रॉब्लम है। कंट्रोल दैट। बच्चे तो वही के वही रहेंगे, आप अटैच ना हो तो भी रहेंगे, डिटैच्ड होकर के उनकी ख्याल रखो, उनको प्यार करो तो भी बच्चे उतने ही खुश रहेंगे। आप इसीलिए नहीं करते हैं कि बच्चे खुश रहें, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम है। और उस वो जो अटैचमेंट है, यही डिसाइड करता है कि आगे मैं सुख भोगूंगा या दुख भोगूंगा। वी डोंट लिव इन द वर्ल्ड ऑफ थिंग्स, एक्चुअली वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ आवर ओन फीलिंग एंड इमोशंस। हमें लगता ऐसा है कि हम दुनिया में रहते हैं, घर के साथ हूं, बाजार के साथ हूं, पैसे के साथ हूं, बच्चों के साथ हूं, पति के साथ हूं, पत्नी के साथ हूं, और जिसके भी साथ हैं वहां हम दुखी हैं, ज्यादातर दुखी हैं। हमें उस चीज में दुनिया नुक्ता दिखता है, प्रॉब्लम दिखता है। इसीलिए नहीं कि पति खराब है, पत्नी खराब है, बच्चे खराब है, घर खराब है, जमीन खराब है, देश खराब है, इसीलिए कि मेरा एटीट्यूड ऐसा है। चेंज हो जाए तो फिर प्यार आने लग जाता है। और क्योंकि मैं अटैच्ड होता हूं, वो अटैचमेंट डिसाइड करता है मेरी अगली योनी, अगला जन्म अच्छा होगा कि बुरा होगा। ध्यान रखिए, आप क्या भोगते हैं ये कम मैटर करता है, मैटर करता है, कम मैटर करता है। उस चीज के साथ आपकी इमोशनली कितना अटैचमेंट है, वो डिसाइड करता है कि आपका लाइफ आगे सुख भरा होगा या दुख से भरा होगा, और आपका नेक्स्ट लाइफ भी कैसा होगा। ये जो अटैचमेंट है इमोशनल, वो डिसीसिव फैक्टर होता है, न कि आप क्या भोगते हो, क्या करते हो। आगे की चीजें हम फिर आगे चर्चा करेंगे। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति की और बहुत बड़ी शुभकामनाएं। ओम शांति।